डॉक्टर क्रेग कीनर रोमन्स व्याख्यान 16 रोमियो 15:29 से 16:07 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह रोमन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह रोमियो 15:29 से 16:07 पर 17:16 है। पॉल का मिशन पृथ्वी के अंतिम छोर तक पहुंचना था। यह ऐसी नींव रखना था जहां पहले नींव नहीं रखी गई थी, ताकि अन्य लोग उन नींव पर निर्माण कर सकें और सुसमाचार को और भी अधिक फैला सकें। और पॉल जल्द ही रोम आने में सक्षम होगा, वह सोचता है, वह आशा करता है, वह प्रार्थना करता है, क्योंकि उसके पास अभी भी एक और मिशन है जिसे वह करना चाहता है। वह स्पेन तक पहुंचना चाहता है, लेकिन उससे पहले उसे यरूशलम जाना होगा। लेकिन स्पेनिश मिशन उन्होंने श्लोक 24 में पेश किया, और वह श्लोक 28 में इसके बारे में अधिक बात करने जा रहे हैं। रोम रास्ते में था और यह कहना असभ्य नहीं माना जाएगा, आप जानते हैं, अरे मैं इस जगह पर जा रहा हूँ, मैं बस रास्ते में रुकना और आपसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं आपसे मिलने नहीं जाता। इसे असभ्य नहीं माना जाएगा क्योंकि यह लंबी दूरी थी। उस समय यात्रा करने में काफी समय लगता था। इसलिए लोगों ने समझा कि यदि आप किसी स्थान पर जा रहे हैं तो आप क्रम में जाएं। तुम इधर उधर मत जाओ। इसके अलावा यह एक बड़ा खर्च था, खासकर क्योंकि पॉल आमतौर पर अपने साथियों को अपने साथ लाता था। इसलिए उन्हें इन सभी यात्राओं के लिए एक किराया रखना होगा। वह टीम मंत्रालय में थे। वह युवा मंत्रियों को सलाह देने और इसे बढ़ाने में लगे हुए थे। और कभी कभी वह उन्हें स्थानों पर छोड़ सकता था, वे वहां काम फैलाना जारी रख सकते थे। लेकिन कुछ सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं के कारण स्पेन वास्तव में उसके लिए नई जमीन तैयार कर रहा होगा। अब तक वह जहां भी गया है वह ग्रीक भाषा बोल सकता है। अब कोरिंथ में ग्रीक और लैटिन था और फिलिप्पी में। और सिर्फ इसलिए कि आप एक रोमन नागरिक के रूप में पैदा हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वचालित रूप से लैटिन बोलते हैं। लेकिन शायद चूंकि उसके मन में रोम जाने का सपना था, शायद अगर उसके पास पहले से ही कुछ लैटिन नहीं होती तो शायद जब वह कोरिंथ में था तब शायद वह कुछ लैटिन सीख रहा होता। लेकिन स्पेन में वे ग्रीक नहीं बोलते थे और अधिकांश लोग लैटिन नहीं बोलते थे। हालांकि यह पश्चिमी भूमध्य सागर में था, इसलिए कुछ लोग लैटिन बोलते थे। पश्चिमी स्पेन में कुछ लैटिन भाषी उपनिवेश थे। उसे लैटिन का उपयोग करने में सक्षम होना होगा या दुभाषियों पर निर्भर रहना होगा, जिसे वह शायद रोम में सीख सकता है। साथ ही स्पेन में कोई यहूदी संबंध नहीं होगा। वहां बाद में, काफी बाद में आराधनालय थे, लेकिन हमारे पास पहली सदी की शुरुआत में स्पेन में यहूदियों के बारे में अधिक सबूत नहीं है। पॉल ने आमतौर पर आराधनालयों में शुरुआत की थी। हम इसे अधिनियम 13:05 में और अन्यत्र अधिनियम में देखते हैं। मुझे लगता है यह 2 कुरिन्थियों 11:24 में भी काफी दृढ़ता से निहित है। तो पॉल वास्तव में नई जमीन तोड़ने जा रहा है। यह उसे सांस्कृतिक रूप से खींचने वाला होगा, लेकिन उसे जो भी करना होगा वह करने को तैयार है। ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं हो सकता था जो यह कर सकता था। लेकिन अगर कोई और ऐसा नहीं कर रहा है और इसे करने की जरूरत है तो यह पॉल का दिल है, इस शब्द को बाहर निकालना उसका मिशन है। और इसलिए अपनी बात बाहर तक पहुंचाने के लिए उसे जो भी करना होगा वह करने जा रहा है। और फिर वह भरोसा कर रहा है कि यह वहां से फैल जाएगा, अन्य लोग इसे वहां से आगे बढ़ाएंगे। और अन्य लोगों ने इसे आगे बढ़ाया। ध्यान दें कि छंद 24 और 28 में स्पेनिश मिशन यरूशलेम मिशन की रूपरेखा तैयार करता है, जिसे बीच में संबोधित किया गया है। और वह कहते हैं, मुझे इस स्पेनिश मिशन पर भरोसा है कि रास्ते में मुझे आपकी मदद मिलेगी, जो समर्थन के लिए एक अंतर्निहित अनुरोध है। वे ऐसा करना अपना सम्मान समझेंगे। सामान्यतः आतिथ्य सत्कार करना एक सम्मान समझा जाता था। आतिथ्य सत्कार करना बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था। इसलिए वे निस्संदेह समर्थन के लिए इस अंतर्निहित अनुरोध को स्वीकार करेंगे। अब समर्थन का मतलब यह था कि वे उसे और उसके साथियों को उनके रास्ते पर भेज देंगे। हो सकता है कि अगर वहां किसी की नजर पड़ी तो वे दुभाषी भी मुहैया कराएंगे, कुछ इस तरह। लेकिन वह अपने अभूतपूर्व मिशन के बारे में कहीं और बात कर रहे हैं। अब रोमन विश्वासी इस अभूतपूर्व स्पेनिश मिशन में मदद कर सकते हैं। अन्य चर्चों ने पूर्वी भूमध्य सागर के क्षेत्र में मदद की है। पश्चिमी भूमध्य सागर रोम का सांस्कृतिक क्षेत्र था, यही उनका सांस्कृतिक प्रभाव था, और इसलिए वे वास्तव में इसमें उसकी मदद कर सकते हैं। अखाया, मैसेडोनिया और गैलाटिया के पूर्वी चर्चों ने, और हमारे पास एक्स एशिया के भी विश्वास करने का कारण है, जेरूसलम मिशन का समर्थन किया, जहां वह आगे जा रहे थे। पॉल का इसका उल्लेख भी अप्रत्यक्ष रूप से सहायक है, जिसका अर्थ यह है कि पूर्वी चर्च वित्त के मामले में पॉल की ईमानदारी पर भरोसा करते हैं। तो देखो, उन्हें मुझ पर भरोसा है। आप भी मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। और पॉल वित्त को लेकर बहुत सावधान था। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 8 और 9 यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी हमारे खिलाफ नहीं बोल सकता। इसीलिए हमारे पास इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक चर्च के प्रतिनिधि आ रहे हैं, ताकि वे यह भी निगरानी कर सकें कि इस धन का क्या होता है। जेरूसलम मिशन, जब तक उसे यरूशलेम में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, उसे रोम आने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। वह वास्तव में इसके लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि वह मानता है कि परेशानी संभव है। वह भविष्य के बारे में सब कुछ नहीं जानता, और ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक उसने इसके बाद यात्रा शुरू नहीं की। अधिनियम की पुस्तक में हर शहर में लोग उसे भविष्यवाणी कर रहे थे कि उसे यरूशलेम में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन किसी भी स्थिति में वह प्रार्थना करता है कि उसे 1531 के पहले भाग में यहूदिया में अवज्ञाकारियों से बचाया जाएगा। वैसे उनकी अनुगूंज भाषा का प्रयोग पहले भी किया जा चुका है। आपके पास 1:30 और 2:08 में अन्य जातियों के बारे में अवज्ञाकारी होने की बात कही गई है, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने 10:21 और 11:30 से 32 में अपने ही लोगों के बारे में अवज्ञाकारी लोगों के रूप में बात की है, क्योंकि सभी ने सुसमाचार का पालन नहीं किया था, और उन्हें ऐसा करना ही चाहिए था, क्योंकि यह सत्य था। इसलिए पॉल प्रार्थना कर रहा है कि उसे वहां अवज्ञाकारियों से बचाया जाएगा, और हम जानते हैं कि प्रेरितों के काम की पुस्तक से वहां पौलुस के साथ क्या हुआ। और यदि हमारे पास प्रेरितों के काम की पुस्तक नहीं होती, तो कम से कम हमारे पास बाद में वे पत्र होते जो पॉल ने रोमन हिरासत से लिखे थे। पॉल मुसीबत में पड़ गया और संभवतः उसे रोम भेज दिया गया, और प्रेरितों के काम की पुस्तक हमें इसके लिए एक अच्छी व्याख्या देती है। और कुल मिलाकर एक्ट्स का सबसे विस्तृत हिस्सा, एक्ट्स में हमारी कथा, प्रत्यक्षदर्शी सामग्री, मैंने अपनी एक्ट्स टिप्पणी में विस्तार से तर्क दिया है कि हमारा मतलब है कि ल्यूक उसके साथ था। ल्यूक ने यह देखा। पॉल ने सीजर से अपील की, और इसीलिए उसे रोमन हिरासत में रोम भेजा जाएगा। इसलिए वह यह भी प्रार्थना करता है कि उसका मंत्रालय, उसका डायकोनिया सुखदायक या स्वीकार्य होगा, वही शब्द या संज्ञानात्मक, वही शब्द जो वह अब तक संतों के लिए उपयोग करता रहा है। या हमने कहा कि इसका अनुवाद किया जा सकता है पवित्र लोग जो भगवान के लिए अलग रखे गए हैं। उसका अभिप्राय यरूशलेम में संतों से है और उसने पहले रोम में संतों से बात की थी, लेकिन पद 26 में उसने यरूशलेम में संतों के बारे में बात की थी। तो यहां उसके मन में यही है कि उन्हें उसका संग्रह प्राप्त होगा। वैसे पहले जब मैं पृथ्वी के छोर के बारे में बात कर रहा था और मैंने मिस्र के दक्षिण में अफ्रीका के बारे में बात की थी, तो यह पूरा अफ्रीका था मिस्र के दक्षिण में। अधिनियमों की पुस्तक में इथियोपिया को नीरो राज्य पर लागू किया गया है और हम इसे विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि वह वहां की रानी को केंदका के रूप में बोलता है जो नियमित रूप से उस विशेष राज्य से जुड़ी हुई थी। यह एक न्यूबियन काला अफ्रीकी साम्राज्य था जो इतना मजबूत था कि रोमन उन पर विजय नहीं पा सके, जैसे वे पूर्व में पार्थियनों पर विजय नहीं पा सके थे। और उन्होंने गॉल पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन वे अभी तक जर्मनों पर विजय नहीं पा सके। उनके साथ युद्ध होते रहते थे। अंततः उन्होंने ब्रितानियों पर विजय प्राप्त कर ली। वास्तव में उन्होंने क्लॉडियस के समय में ऐसा किया था, इसलिए यह पहले ही किया जा चुका था, ब्रिटेन का हिस्सा था। इसलिए वे अपनी सीमाओं से परे भी लोगों के बारे में जानते थे। तो पृथ्वी के छोर तक जा रहे हैं, लेकिन यहां पॉल वापस वहीं जा रहा है जहां से मिशन शुरू हुआ था, वापस यरूशलेम। जरूरतमंदों के लिए संग्रह और देखभाल। पॉल पहले भी इसमें शामिल रहा था। प्रेरितों के काम 11:30 अगबुस और कुछ अन्य भविष्यवक्ताओं द्वारा अंताकिया की कलीसिया को आने वाले अकाल के बारे में भविष्यवाणी देने के बाद प्रेरितों के काम 11:30 बरनबास और शाऊल को अंताकिया से अकाल राहत देने के लिए भेजा जाता है, भले ही भविष्यवाणी पूरे को प्रभावित करने वाली हो दुनिया। अंताकिया को भी इसका सामना करना पड़ेगा, लेकिन वे यरूशलेम में चर्च की मदद करते हैं। 12:25 वे वहां से वापस आ रहे हैं। आपके पास पॉल के मंत्रालय में कुछ वैसा ही है जिस तरह से ल्यूक ने इसका वर्णन किया है, जैसा कि आपके पास अधिनियम 6 में है, जहां आपने इन मंत्रियों को कुछ ऐसे कामों के लिए अलग रखा है जो प्रेरित पहले से ही कर रहे थे, जरूरतमंदों की देखभाल के लिए, और सुंदर जल्द ही वे उपदेश भी देना शुरू कर देते हैं। इसलिए सामाजिक मंत्रालय, गरीबों का मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है, और यह इंजीलवाद मंत्रालय और यीशु के बारे में अच्छी खबर और शिक्षा का प्रचार करने के साथ असंगत नहीं है, और अक्सर यहीं से आप शुरुआत भी करते हैं। परंतु पौलुस से यरूशलेम के खंभों ने पूछा था। स्तंभ वास्तव में उस समय प्रमुख या महत्वपूर्ण लोगों के लिए एक नाम के रूप में उपयोग किया जाता था, ठीक उसी तरह जैसे आज अंग्रेजी में समुदाय के स्तंभों का उपयोग किया जाता है। परंतु गलातियों 2:10 उन्होंने पौलुस से विनती की थी कि वह जरूरतमंदों को न भूले, और उन्होंने कहा, अरे नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए पॉल ऐसा करना जारी रख रहा है। यह सिर्फ एक बार की बात नहीं है, बल्कि ऐसा पहले भी हो चुका है। और अब हालांकि प्रवासी भारतीयों के चर्चों की एक विस्तृत श्रृंखला से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह है, न कि केवल एंटियोक से। और 1526 उन्होंने निर्दिष्ट किया कि अखाया और मैसेडोनिया के चर्च ऐसा करने से प्रसन्न हुए थे। खैर, हम 1 और 2 से जानते हैं, विशेषकर 2 से, कि जरूरी नहीं कि अखाया में चर्च ऐसा करने से पूरी तरह प्रसन्न हो। 2 कुरिन्थियों 11, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग शिकायत कर रहे थे। जब पॉल ने 2 कुरिन्थियों को लिखा तब तक कुछ बाहरी लोग आ गए थे और शिकायत की थी, ठीक है पॉल, वह आपसे कोई पैसा नहीं लेता है क्योंकि वह अपने लिए किसी लायक नहीं है। लेकिन फिर 2 कुरिन्थियों 12 हमें पता चलता है कि उनमें से कुछ लोग यरूशलेम चर्च के लिए धन जुटाने के बारे में शिकायत कर रहे थे। खैर, वह भरोसेमंद नहीं है, इसलिए वह अपने लिए पैसे नहीं लेंगे। इसके लिए वह पैसे ले रहा है, लेकिन वे चाहते थे कि वह अपने लिए पैसे ले, क्योंकि तब वे उसके संरक्षक की तरह बन सकते थे। वह जो करता है उसे वे एक तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 16:1-4 तक वह अखाया की कलीसियाओं से आग्रह कर रहा था कि वे तैयार होने के लिए धन अलग रखें। 2 कुरिन्थियों 8:9 में पॉल बहुत धीरे से बोलता है, लेकिन कहता है, आप जानते हैं, मैसेडोनिया के चर्च वास्तव में इस गवाही से उत्साहित थे कि आप अखाया के चर्च इस संग्रह में योगदान देने जा रहे थे। और आप जानते हैं, उस समय नागरिक प्रतिद्वंद्विता एक बड़ी बात थी और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता भी। तो अब पॉल कहता है, लेकिन मैं टाइटस को सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए भेज रहा हूं कि आप वास्तव में तैयार हो रहे हैं, क्योंकि पॉल थोड़ा चिंतित नजर आ रहे हैं। वह कहते हैं, मैं चिंतित नहीं हूं, मेरा मतलब है, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मैं सिर्फ आश्वस्त होने के लिए टाइटस को भेज रहा हूं। ऐसा लगता है कि पॉल को थोड़ी चिंता है कि अखाया के चर्च, जो इन प्रतिद्वंद्वियों के कारण इस समय उनके साथ आदर्शवादी शर्तों पर नहीं हैं, उनके पास भेंट तैयार नहीं होने वाली है। खैर, 2 कुरिन्थियों में यह थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन प्रेरितों के काम 21:3 में पॉल आता है और वह उनके साथ सर्दियां बिताता है। हालात ठीक होते दिख रहे हैं। टाइटस आगे बढ़ गया, चीजें साफ हो गईं, और इसलिए हम देखते हैं कि जब पॉल रोमियो 15:26 में कुरिन्थ से लिख रहा था, तब तक अखाया की चर्च वास्तव में इस पर काम कर रही थी। मैसेडोनिया के चर्च निश्चित रूप से इसमें शामिल हैं। कुछ प्रतिनिधि वास्तव में पॉल के साथ कुरिन्थ आए हैं, जैसा कि हम रोमियो 16 में देखेंगे। मैसेडोनिया का चर्च निश्चित रूप से इसमें शामिल है। वह उनके बारे में 2 कुरिन्थियों 8:1-5:9-2-4 में बात करता है, और हम इन प्रतिनिधियों के बारे में अधिनियम की पुस्तक में भी देखते हैं। मैसेडोनिया के बेरिया से सोपतेर, थिस्सलुनीके से एरिस्टार्चस और सेकुंडस। वह ऐसा नहीं करता है, एक्ट्स में यह उल्लेख नहीं है कि फिलिप्पी से कौन आता है, लेकिन जब आप फिलिप्पी में 1:20-6 पर पहुंचते हैं तो हम शुरू करते हैं। तो यह हो सकता है कि ल्यूक स्वयं फिलिप्पी के चर्च का प्रतिनिधि हो। अधिनियम 20:4 में भी संग्रह के लिए अन्य प्रतिनिधि, हालांकि अधिनियम उन कारणों से इसे संग्रह के रूप में नहीं बताता है जिनका हम उल्लेख करेंगे, लेकिन अन्य प्रतिनिधि तुखिकुस और ट्रोफिमस स्पष्ट रूप से एशिया से हैं। तो पश्चिमी एशिया माइनर के उस प्रांत से और गैलाटिया से भी उन्होंने उनके तैयार रहने की बात कही। 1 कुरिन्थियों 16:1 वह पहले ही गैलाटिया में चर्चों के संग्रह में शामिल होने के बारे में बात कर चुका है। उन्होंने यहां उनका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन अधिनियम 20:4 में डर्बे के गयुस और टिमोथी का उल्लेख है, जिनके बारे में अधिनियम ने पहले ही उस क्षेत्र से होने का उल्लेख किया है। अब विद्वानों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई है कि गैलाटिया का क्या मतलब है, लेकिन पॉल मैसेडोनिया और अखाया की तरह प्रांतीय शब्दों का उपयोग करना पसंद करते हैं। यह एक प्रांत का नाम है, और अधिनियमों में जिस क्षेत्र का वर्णन किया गया है वह गलाटिया प्रांत का दक्षिणी भाग है। लोग फ्रीजियन हैं, यहां तक कि लाइकियन भी, लेकिन विद्वान जो इस क्षेत्र के इतिहास के विशेषज्ञ हैं, शास्त्रीय विद्वान बारबरा लेविक और स्टीफन मिशेल, सभी इस बात से सहमत हैं कि पॉल दक्षिण गैलाटिया को लिख रहे हैं। गलातियों का पत्र किसे संबोधित करता है, इस बारे में विद्वानों का बहुमत यही दृष्टिकोण है, और मुझे लगता है कि यह सही दृष्टिकोण है कि पॉल दक्षिण गलातिया को संबोधित कर रहा है। संग्रह और सामंजस्य। संग्रह क्या कहता है? कि आपके पास इन मुख्य रूप से गैर यहूदी क्षेत्रों के प्रतिनिधि यहूदिया के लिए भेंट ला रहे हैं। खैर, यहाँ अन्य जातियों का प्रेरित पॉल है। 11:13, 15:18 से 29 तक यह संदर्भ यरूशलेम की सेवा कर रहा है। इसके अलावा यह मुख्य रूप से यरूशलेम की सेवा करने वाले गैर यहूदी चर्च हैं। वह कुछ संप्रेषित करने वाला है। पॉल ऋण के दायित्व के बारे में बात करता है और कैसे गैर यहूदी चर्च उन पर ऋणी थे। पॉल ने पहले अपने मिशन के कारण अन्य जातियों के प्रति अपने ऋण के बारे में बात की थी, रोमियों 1:14। अब वह 15:27 में पॉल के लोगों के प्रति अन्य जातियों के ऋण के बारे में बोलता है। पारस्परिकता एक प्रमुख सांस्कृतिक मूल्य था और परोपकारियों को सम्मान के साथ भुगतान किया जाना चाहिए था। जैसे कि अगर उन्होंने आपको पैसे दिए तो आपने पैसे वापस नहीं दिए। यह अपमानजनक था, लेकिन अगर वे नागरिक कार्यों के लिए कुछ दान करते थे तो लोगों को उन्हें मानद शिलालेखों आदि से सम्मानित करना पड़ता था। पारस्परिकता एक प्रमुख सांस्कृतिक मूल्य था और इसलिए लोग इसे समझेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा, यदि उन्होंने आध्यात्मिक मामलों में अन्य जातियों की सेवा की है तो अन्य जातियों को निश्चित रूप से शारीरिक मामलों या आमतौर पर अनुवादित भौतिक मामलों में कुछ देना होगा। आध्यात्मिक होना शारीरिक से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए वह कहते हैं कि यहूदी संतों, समर्पित लोगों जो यरूशलेम में भगवान के हैं, ने आपको आध्यात्मिक रूप से प्रदान किया है, इसलिए उन्हें भौतिक रूप से मदद करें। और जिस शब्द का उपयोग वह उनकी सेवा के लिए करता है, जिस तरह से अन्य जातियों को उनकी सेवा करनी चाहिए, वह लेटर जियो है, जिसका अर्थ कई अलग अलग चीजें हो सकता है। और यह सवाल है कि क्या इसका वह मतलब है जो मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ, लेकिन इसका कुछ लेना देना हो सकता है। पॉल इसे व्यापक तरीकों से उपयोग करता है, लेकिन इसका यहाँ कुछ लेना देना हो सकता है, जिस तरह से लेटर जियो का उपयोग किया गया था, जो हम अक्सर मानद शिलालेखों में पाते हैं, जहाँ आपके पास सार्वजनिक सेवाएं थीं, जहाँ लोग धार्मिक अनुष्ठानों के साथ समुदाय की भौतिक सेवा करते थे। इसका अक्सर अनुवाद किया जाता है। कभी कभी ये अनिवार्य दान होते थे। वे कहते, अरे आप तो पैसे वाले आदमी हैं, हमारे समाज को इसकी जरूरत है, तो आप इसे क्यों नहीं देते? और वह व्यक्ति कभी कभी कहता, अच्छा मैंने पिछले वर्ष दिया था। हाँ, लेकिन आप हमारे एकमात्र अमीर व्यक्ति हैं, आपको इसे इस वर्ष फिर से करना होगा। इसलिए कभी कभी वे अनिवार्य होते थे, लेकिन अक्सर वे समुदाय की मदद के लिए होते थे और कभी कभी वे बदले में सम्मान पाने की उम्मीद करते थे। लेकिन पॉल का कहना यह है कि उन्होंने आध्यात्मिक रूप से आपकी सेवा की, अब उनकी सेवा करें। उन लोगों को मत भूलिए जिन्होंने आपके लोगों को ईसाई धर्म का प्रचार किया। यदि किसी दिन उन्हें जरूरत होती है, और वास्तव में ऐसा हुआ है, तो आप जानते हैं, दुनिया के कुछ हिस्सों में जो ईसाई धर्म प्रचार कर चुके थे, उन्होंने दूसरों को धर्म प्रचार किया, और अब उन्हें फिर से धर्म प्रचार की जरूरत है, इत्यादि। यीशु हर किसी से प्यार करता है। यीशु सबके लिए मरे, और इसलिए हम सुसमाचार को फैलाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहते हैं। इसकी कुछ पृष्ठभूमिया, लोगों ने इसे किस प्रकार देखा होगा? खैर, एक सुझाव यह है कि प्राचीन भूमध्य सागरीय दुनिया भर में लोग थे। वयस्क यहूदी पुरुष यरूशलेम में मंदिर के रखरखाव के लिए 1.5 कर, आधा शेकेल कर, क्षमा करें, आधा शेकेल कर का योगदान करते थे, और इसके कारण वास्तव में मंदिर इतना समृद्ध हो गया कि वे केवल इस सुनहरी लता का निर्माण कर रहे थे और इसे मंदिर में और अधिक लंबा कर रहे थे। जोसेफस इसका वर्णन करता है। लेकिन रोमन दुनिया भर से यहूदी लोग इसमें योगदान देंगे और दुनिया के अन्य हिस्सों से भी पार्थिया में। क्या यहाँ कोई समानता है? कुछ अर्थों में वहाँ है। प्रेरणा अलग है, विचार अलग है। यह कोई कर नहीं है, लेकिन यह समझाने में भी मदद करता है कि आपने वहां ले जाए जा रहे धन के साथ आने वाले प्रवासी मंडलों के एजेंटों का कितना सम्मान किया है। ऐसी कुछ प्रक्रियाएं थीं जिन्हें पॉल सीख सकता था और उसके सहयोगी उस चीज को देखकर सीख सकते थे जो लंबे समय से उपयोग में थी जहां चर्च ठीक है, नहीं, क्षमा करें, आराधनालय समुदाय इस मंदिर कर के लिए दान कर रहे थे। यरूशलेम में चर्च ने इस तरह के योगदान को जिस तरह से देखा होगा वह कुछ और है। शायद वे यशाया 45:14, यशाया 60:6-10, यशाया 66:20 इत्यादि जैसे अन्य जातियों की युगांतकारी श्रद्धांजलि के बारे में सोच रहे हैं। अब अधिनियम अध्याय 15 के बाद से आपके पास यरूशलेम के प्रेरित अभी भी यरूशलेम में हैं, या कम से कम उनमें से कई अभी भी यरूशलेम में हैं। और जाहिर तौर पर वे जो उम्मीद कर रहे हैं वह यह है कि यरूशलेम को परिवर्तित किया जाएगा। राष्ट्र अपना धन यरूशलेम लाएंगे और यरूशलेम में परमेश्वर के तरीकों के बारे में जानने आएंगे। आप यशाया को इस तरह पढ़ सकते हैं। यशायाह में आपके पास मौजूद कुछ विभिन्न प्रकार के चित्रों का क्रम वास्तव में स्पष्ट नहीं है, और यह बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता जैसा पॉल ने इसकी कल्पना की थी, लेकिन गैर यहूदी विश्वासियों का यह संग्रह गैर यहूदी विश्वासियों की प्रतिबद्धता को प्रकट करेगा। इस अवधि में या उसके बाद किसी भी अन्य यहूदी संप्रदाय में इतने अधिक गैर यहूदी धर्मांतरित नहीं हुए। ईसाई आंदोलन गैर यहूदियों के बीच बढ़ता ही गया और बढ़ता ही गया। इसलिए पॉल इस मिशन को आंशिक रूप से इसके अर्थ के हिस्से के रूप में देख सकता था, अपने लोगों को ईशा के लिए उकसाने की दिशा में एक कदम, जैसा कि उसने रोमियो अध्याय 11:14-15 में बात की थी। और 15:28 में पॉल स्वयं लाक्षणिक रूप से संग्रह पर अपनी मुहर लगाने जा रहा है। व्यावसायिक दस्तावेजों में मुहरें विभिन्न तरीकों से दिखाई देती हैं, लेकिन कभी कभी वे किसी चीज की सामग्री को प्रमाणित करने के लिए मुहर के रूप में भी दिखाई देती हैं। खैर, पॉल यह सुनिश्चित करने जा रहा है कि किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ न की जाए। तकनीकी रूप से पॉल इसे आलंकारिक रूप से उपयोग कर रहा है, लेकिन तकनीकी रूप से आप क्या करेंगे? आपके पास अपने स्वयं के विशिष्ट मुहर चिन्ह के साथ एक हस्ताक्षर अंगूठी होगी और आप गर्म मोम के साथ कुछ सील करेंगे और फिर मोम के दौरान आप अपनी मुहर डाल देंगे, अभी भी गर्म था, और सूखने के बाद उस पर वह निशान पड़ जाता था। और आप जानते हैं, अगर किसी ने सील तोड़ दी तो वे दोबारा आपकी सील नहीं बना सकते। इसलिए एक बार जब कोई चीज सीलबंद हो जाती है, जब उसे खोला जाता है, तो आप यह दिखावा नहीं कर सकते कि उस पर अभी भी मूल सील लगी हुई है। आपको इसे किसी चीज से फिर से सील करना होगा। किसी और की हस्ताक्षर अंगूठी या आपकी हस्ताक्षर अंगूठी या कुछ और कहने के लिए, ठीक है, मैं प्रमाणित कर रहा हूं कि सामग्री अभी भी वहां है। तो पॉल उनके साथ जा रहा था, और आपके पास इन विभिन्न चर्च समुदायों के प्रतिनिधि थे जो प्रमाणित करेंगे कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। और यह यरूशलेम चर्च और संपूर्ण यरूशलेम को एक संदेश भेजेगा कि यहां अन्य जाति आ रहे हैं। भगवान अपने वादे पूरे कर रहे हैं। अच्छा, क्या यरूशलेम चर्च इसे समझेगा? और क्या शेष यरूशलेम इन अन्य जातियों के यरूशलेम आने की सराहना करेगा? उत्तर का भाग पाने के लिए आप अधिनियम अध्याय 21:22 पढ़ सकते हैं। लेकिन पॉल एक प्रार्थना अनुरोध प्रस्तुत करता है। पॉल अक्सर अपने पत्रों में प्रार्थना का अनुरोध करता है। पॉल नुकसान से अपनी मुक्ति का श्रेय आंशिक रूप से उनकी प्रार्थनाओं को देता है। 2 कुरिन्थियों 1:11 में कुरिन्थवासी उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे और उसे इफिसुस में बहुत कठिनाई और विरोध का सामना करना पड़ा। पॉल अन्यत्र उनकी प्रार्थनाओं के कारण अपनी भावी रिहाई की बात करता है। फिलिप्पियों 1:19 और फिलेमोन 22 वह कहता है, मुझे भरोसा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें सौंपा जा सकता हूँ, मुझे बचाया जा सकता है और मैं आपसे दोबारा मिल सकता हूँ। 1 थिस्सलुनीकियों 5:25 पहले के समय में वह थिस्सलुनीके के विश्वासियों से बस इतना ही कहता है, हमारे लिए प्रार्थना करो, विश्वास के विरोधियों से बचाया जाए। अच्छा, क्या प्रार्थना का उत्तर दिया गया? पॉल रोम पहुंच गया, संभवतः उस तरह नहीं जैसा उसने उम्मीद की थी, लेकिन भगवान ने प्रार्थना का उत्तर दिया। लेकिन क्या जेरूसलम चर्च ने संग्रह स्वीकार किया? कुछ विद्वानों को इस पर संदेह है। कुछ अच्छे अच्छे विद्वान इस पर संदेह करते हैं। मेरे कुछ विद्वान मित्र इस पर संदेह करते हैं, लेकिन मैंने तर्क दिया है कि नहीं, उन्होंने संग्रह स्वीकार कर लिया है। अधिनियमों में संग्रह का उल्लेख केवल अधिनियम 24:17 में स्पष्ट रूप से किया गया है। स्पष्ट रूप से ल्यूक का इस पर अधिक ध्यान नहीं है कि पॉल की यरूशलेम यात्रा का उद्देश्य क्या है, लेकिन जब ल्यूक ने लिखा तब यह कोई मुद्दा नहीं था। शायद इससे सुलह नहीं हो पाई। और अगर, जैसा कि बेन विद्रिंगटन और मैंने और एफ ब्रूस ने अपने एक कमेंट्री के 3rd संस्करण में और कुछ अन्य लोगों ने तर्क दिया है, तो वह जेरूसलम के नष्ट होने के बाद लिख रहे हैं, गैर यहूदी चर्चों और उस समय के गैर मुद्दे के बीच सामंजस्य जो ल्यूक लिख रहे हैं। अच्छा, क्या यह एक जाल था? कुछ लोगों ने वास्तव में तर्क दिया है कि जेम्स और बुजुर्गों ने पॉल को जाल में फंसाया था। उन्हें उम्मीद थी कि उसे यरूशलेम के मंदिर में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा मामला है। वास्तव में प्राचीन वक्ताओं में मानक तर्कों में से एक यह था कि जब आपको किसी चीज के खराब होने के लिए दोषी ठहराया जा रहा हो, तो यह कहना था कि मैं नहीं सोच सकता था कि यह कैसे होगा। खैर, पॉल के मामले में वह वही था जो जानता था कि यह कैसे होगा, क्योंकि उसके जाने से पहले ही उसे भविष्यवाणियां मिल रही थीं। यह तर्क कि जेम्स और बुजुर्ग पॉल के समर्थक नहीं थे और वे उसके मुकदमे या ऐसी किसी भी चीज में उसकी मदद करने के लिए नहीं आए, यह मौन से एक तर्क है। और मुझे लगता है कि ल्यूक कितनी अन्य चीजों को छोड़ देता है, इस पर विचार करते हुए यह चुप्पी से विशेष रूप से अच्छा तर्क नहीं है। मेरा मतलब है, वह कहता है कि पॉल पिंतेकुस्त के दिन तक यरूशलेम जाने की कोशिश कर रहा है, प्रेरितों के काम 20:16। वह वहां पहुंचता है, वह उपदेश देता है, और इसलिए आप यह सोचने के लिए तैयार हैं कि इसकी तुलना संभवतः प्रेरितों के काम 2 में पीटर के पेंटेकोस्ट उपदेश से की जा सकती है। लेकिन दावत का फिर से उल्लेख नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि यह अधिनियम 24 में कुछ बार निहित है। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका ल्यूक विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता है। इसके अलावा उन्होंने पॉल के कुछ दावों को प्रमाणित किया होगा, कुछ दावे जो उसने अधिनियम 24 में अपनी सुनवाई के दौरान किए थे, जैसे कि उसे यरूशलेम आए कितने दिन हो गए थे और वह प्रसाद लाने के लिए आया था। ये ऐसी चीजें थीं जिन्हें प्रमाणित करने के लिए यरूशलेम चर्च को बुलाया जाएगा यदि कोई उन्हें सत्यापित करने जा रहा था। इसलिए आप केवल इसलिए चुपचाप बहस नहीं कर सकते क्योंकि उनका उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही उन्हें खतरों का भी सामना करना पड़ा। वास्तव में जेम्स को संभवतः पॉल से पहले फांसी दे दी गई थी। पॉल को रोम भेज दिया गया और उसके तुरंत बाद जेम्स को फांसी दे दी गई। जब रोमन गवर्नर फेस्टस की कुछ वर्षों के बाद कार्यालय में मृत्यु हो गई, तो वर्तमान महायाजक ने इसका फायदा उठाकर जेम्स और कुछ अन्य लोगों को मार डाला। और फिर जो लोग कानून के समर्थक थे, जिनमें शायद फरीसी भी शामिल थे, उन्होंने महायाजक ने जो किया उसके खिलाफ बोला। और परिणामस्वरूप जब नया रोमन गवर्नर आया तो उसने उस महायाजक को पदच्युत कर दिया। लेकिन ये स्थिति दूसरों के लिए भी गंभीर हो सकती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह कोई जाल है। अब मुझे क्यों लगता है कि यरूशलेम चर्च ने संग्रह स्वीकार कर लिया है? प्राचीन काल में किसी उपहार को अस्वीकार करना शत्रुता मानी जाती थी, इसलिए यदि वे उपहार से इनकार कर रहे थे तो वे वास्तव में कह रहे थे, पॉल हम आपके साथ हैं। हम अन्य जातियों की कलीसिया के साथ किसी संगति में नहीं रहना चाहते, हम अन्य जातियों की कलीसियाओं के शत्रु बनना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत अधिक संभावना है, निश्चित रूप से जिस तरह से एक्ट चर्च के नेताओं के लिए चीजों को चित्रित करता है और जिस तरह से पॉल के पत्र इसे चित्रित करते हैं, अगर पॉल ने सोचा कि यह ऐसा था तो वह गया ही नहीं होता। इसलिए यह संग्रह वह सब कुछ पूरा नहीं कर सकता जिसकी पॉल को आशा थी। यह पूरे चर्च को यह कहने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है, अरे हम अपने गैर यहूदी भाइयों और बहनों से प्यार करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भेंट अस्वीकार कर दी गई। इसके अलावा मुझे लगता है कि यह कहने का एक बहुत ही गंभीर कारण है कि इसे अस्वीकार नहीं किया गया था। यह यरूशलेम चर्च था जिसने पॉल से अनुरोध किया था कि वह गलातियों 2:10 से शुरू करके यरूशलेम में गरीबों को न भूलें। उन्होंने इसका अनुरोध किया। वे संभवतः इसे क्यों ठुकरा देंगे? लेकिन पॉल उसके बाद रोम आने की उम्मीद कर रहे हैं और उनका मानना है कि उनका आतिथ्य उन्हें तरोताजा कर देगा। और यह भाषा, इसका उपयोग आराम या परिश्रम से राहत के लिए किया जा सकता है। यह भाषा 15:32 में। वह सोच रहा है कि रोम को अपने परिश्रम से छुट्टी मिल सकती है। और उस भाषा का प्रयोग पॉल के पत्रों में अन्यत्र किया गया है। 1 कुरिन्थियों 16:18, कुरिन्थियों की सेनाओं ने पौलुस और कुरिन्थियों को तरोताजा कर दिया। 2 कुरिन्थियों, तभी वे उससे मिलने आए। 2 कुरिन्थियों 7:13, तीतुस को कुरिन्थियों के बीच में ताजा किया गया। 7 फिलेमोन, फिलेमोन के आतिथ्य ने विश्वासियों को तरोताजा कर दिया है। और इसलिए पॉल 15:33 में इस खंड को समाप्त करता है, शांति का परमेश्वर आप सभी के साथ रहे। खैर, जब आप रोम में विश्वासियों के बीच संघर्ष के बारे में सोचते हैं तो शांति का देवता बहुत महत्वपूर्ण है। और बाद में पत्र के अंत में वह कहने जा रहा है कि कैसे शांति का भगवान जल्द ही शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचल देगा। 4:09, एक ऐसे संदर्भ में जहां योदिया और सिंटिस 2 महिलाएं जिन्होंने 4 में सुषमाचार में पॉल के साथ काम किया था, कुछ संघर्ष में हैं। और वह अपने एक अन्य सहकर्मी क्लेमेंट से उनके बीच मध्यस्थता करने और उनके बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश करने के लिए कह रहा है। 4:09 में वह कहता है, मेरे उदाहरण का अनुसरण करो और शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। 1 थिस्सलुनीकियों 5:23, शांति का परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से अपने लिए समर्पित करे। 13:20-21, शांति का परमेश्वर तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार पूरी तरह तैयार करे। कई क्षेत्रों में शांति को अत्यधिक महत्व दिया गया। निश्चित रूप से यरूशलेम के विनाश के बाद फरीसियों के बीच शांति समर्थक प्रमुख आवाज थे और उन्होंने परंपरा का हवाला दिया, जाहिर तौर पर हिल्लेल की ओर लौटते हुए कई रब्बी यह कहने के लिए प्रसिद्ध थे, शांति महान है। और वे बताएंगे कि शांति इतनी महान क्यों है। बेशक रोमन साम्राज्य ने भी ऑगस्टस द्वारा स्थापित की गई शांति के बारे में बात की थी, हालांकि वह एक कल्पना थी, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया था। रोमियो अध्याय 16। खैर, मार्सियन से क्षमा याचना के साथ ऐसा लगता है कि मार्सियन ने रोमियो अध्याय 14 को समाप्त कर दिया है, और साथ ही उन लोगों से क्षमा याचना के साथ जिन्होंने सोचा था कि रोमन अध्याय 16 मूल रूप से इफिसस को संबोधित था और किसी तरह गलती से रोमन को लिखे पत्र पर अटक गए थे, जिसे हैरी गैम्बल, येल और अन्य लोगों द्वारा सही किया गया था। तो उन सभी से क्षमा याचना के साथ मैं रोमियो 16 पर जा रहा हूं, जो मुझे लगता है कि इस पत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यह वैसे ही खुलता है जैसे पॉल अब खोल रहा है। पॉल को इस पत्र को विभिन्न चरणों में बंद करने में अपना समय लग रहा है। फिलिपियंस में कुछ बार ऐसा होता है जब वह कहता है, अंततः भाइयों और बहनों, आप कुछ अन्य प्राचीन पत्र भी रहे हैं। मुझे लगता है कि कभी कभी इसे खत्म करना मुश्किल होता है, लेकिन आखिरकार इसका मतलब किसी भी तरह अंत की ओर बढ़ना होता है। अनुशंसा पत्र अध्याय 16 श्लोक 1 और 2। खैर, अक्सर सिफारिश पत्र पत्र के वाहक का परिचय कराता है, और यह इस मामले में सच है। फोएबे के मामले में अक्सर ठीक है, आम तौर पर अनुशंसा पत्र साथियों को लिखे जाते थे, कभी कभी वे अधीनस्थों को लिखे जाते थे, लेकिन यह एक सामाजिक वर्ग का व्यक्ति हो सकता था जो अनुशंसित से अधिक था, वह व्यक्ति जिसकी सिफारिश की जा रही थी, लेकिन अपने सहकर्मी के साथ कुछ महत्व रखता था, या वह अधीनस्थ जिसके लिए उस व्यक्ति की सिफारिश की जा रही थी। और कभी कभी वे कहते थे, यही कारण है कि यह व्यक्ति इसका हकदार है, जो पॉल फोएबे के बारे में कहता है। कभी कभी वे ऐसी बातें कहते थे, मेरी सिफारिश को साबित करो, इस व्यक्ति को साबित करो कि मैं तुम्हारी सिफारिश कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मैंने उनकी ओर से कितना अच्छा पत्र लिखा है। कभी कभी वे कहते, ऐसा करके मेरे प्रति अपना प्यार साबित करो। दूसरा कुरिन्थियों 8:24 में भी आपके प्रेम को सिद्ध करने का विचार है। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा, मैं आपका आभारी हूं, मैं चुका दूंगा। पॉल फिलेमोन 19 में ऐसा ही कुछ कहता है। हालांकि फिलेमोन 19 में वह कुछ और भी करता है जो आपको कभी कभी अनुशंसा पत्रों में मिलता है। वैसे तुम्हें मुझ पर एक एहसान है, और इसलिए इसे मेरे प्रति एक दायित्व पूरा करने के रूप में लें। पॉल एक विधि का उपयोग करता है जिसे हम अक्सर प्राचीन स्रोतों में पाते हैं। हम प्रेरितों के काम 24 में पॉल को इसका उपयोग करते हुए पाते हैं। हम इसे फिलेमोन में पाते हैं। हम इसे इब्रानियों 11 में भी एक बिंदु पर पाते हैं। इसका उल्लेख नहीं है, और फिर आप इसका उल्लेख करते हैं। आप इसका उतना उल्लेख नहीं करते जितना आप कर सकते थे, लेकिन आप इसका उल्लेख करते हैं। खैर, उस समय सिफारिश पत्र एक बड़ी चीज थी। सिसरो के पास उनके एक पत्र की एक पूरी किताब है, जिसमें अनुशंसा पत्रों के अलावा कुछ अन्य पत्र भी शामिल हैं। और वास्तव में उन्होंने बहुत अच्छे लेख लिखे। मेरा मतलब है, आप इसे पढ़ते हैं और कहते हैं, वाह, वह हर किसी से कहने के लिए एक अलग बात कैसे सोच सकता है। पूरी तरह से हर कोई नहीं, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, लेकिन वह अपने अनुशंसा पत्रों के साथ बहुत रचनात्मक था। और कभी कभी आप बता सकते हैं कि इस व्यक्ति की सिफारिश की गई थी, और वह कह रहा है, ठीक है, इस व्यक्ति की मेरी सिफारिश की गई थी, मैं यह अनुशंसा आप तक पहुंचा रहा हूं। वह वास्तव में उस व्यक्ति को नहीं जानता था, लेकिन अन्य समय में वह जानता है कि क्या कहना है। वह इस काम में बहुत कुशल था। फोएबे कौन है? खैर, फीबी एक व्यवसायी महिला हो सकती है जो यात्रा करती है। रोम और कोरिंथ के बीच बहुत सारे संबंध थे, इसलिए वह वैसे भी यात्रा कर रही होगी। लोग अक्सर आगे पीछे यात्रा कर रहे थे। वह बाहर काम करती है और जाहिर तौर पर कैनक्री में रहती है। कैनक्री कोरिंथ के बंदरगाह शहरों में से एक था। अब आपके पास एजियन बंदरगाह था जो कैनक्री था, जो कोरिंथ के इस्तमुस के पूर्वी भाग पर था। तब आपके पास लेहम था। यह इस्तमुस के पश्चिमी किनारे पर था, कोरिंथ के उत्तर पश्चिम की तरह। कोरिंथ के पास बंदरगाहों और इसके दोनों ओर बंदरगाह शहरों के साथ एक व्यापारिक समुदाय होने का आशीर्वाद और समस्याएं दोनों थीं। उनके पास बहुत धन था। उनके पास एक नवधनाढ्य वर्ग था, ऐसे लोगों का एक वर्ग जो अभी अभी अमीर बने थे। वे वंशानुगत कुलीन नहीं थे। उनमें से बहुत से मुक्त दासों के वंशज भी थे, लेकिन उनके पास ढेर सारी नई संपत्ति थी। वहां उनके बहुत से विदेशी धर्म भी थे। बेशक आराधनालय में चर्च थे। कैनक्री में उनके पास मिस्र के देवता सेरापिस का एक मंदिर भी था। उन्हें यौन संचारित रोग भी बहुत थे। पुराने कोरिंथ के संबंध में एक कहावत थी, कोरिंथ की यात्रा हर किसी के लिए नहीं होती। और इसका संदर्भ कम से कम कभी कभी कोरिंथ में वेश्यावृत्ति उद्योग से संबंधित था। स्ट्रैबो पुराने कोरिंथ में एफ्रोडाइट की 1000 सहवेश्याओं के बारे में बात करता है। अब एक्रो कोरिंथ पर खुदाई से पता चलता है कि वहां किसी भी तरह से 1000 वेश्याएं नहीं हो सकती थीं। कुछ लोग सोचते हैं, ठीक है, शायद वे सिर्फ एफ्रोडाइट को समर्पित थे जो वेश्यावृत्ति के संरक्षक देवता थे। लेकिन वेश्यावृत्ति और यौन अनैतिकता के लिए कोरिंथ की प्रतिष्ठा पुराने कोरिंथ तक ही सीमित नहीं थी, जिसे 146 ईसा पूर्व के आसपास कहीं नष्ट कर दिया गया था और फिर इसे फिर से बनाया गया था। लूसियस ममियस और उसके बाद जूलियस सीजर ने कहा कि यह 44 ईसा पूर्व के आसपास एक उपनिवेश हो सकता है कि मेरे पास यह बिल्कुल सही न हो, लेकिन ऐसा कुछ है। वहां अभी भी कुछ यूनानी रहते थे, लेकिन पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इसे एक रोमन उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे नया कोरिंथ माना जाता था। यहां तक कि न्यू कोरिंथ भी वेश्यावृत्ति और यौन अनैतिकता के लिए प्रसिद्ध था। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि पॉल ने कुछ बातें कुरिंथियों को लिखीं जो उसने लिखीं। लेकिन किसी भी स्थिति में यह एक बंदरगाह था। खैर, इसके दोनों ओर बंदरगाह शहर थे। यह एक व्यापारिक शहर था। इस तरह इसने अपनी संपत्ति हासिल की। इस तरह यह अपनी जनसंख्या का भरण पोषण करने में सक्षम था। यह एक प्रकार से सेवा केंद्र था। और फोएबे, जो शायद एक व्यवसायी महिला थी, साधन संपन्न व्यक्ति थी और इसीलिए वह यात्रा कर सकती थी। अधिकांश लोग इसे वहन नहीं कर सकते थे। हम 16.1 और 16.2 दोनों में प्रभु के लिए उसके कार्य के बारे में पढ़ते हैं। मैं 16.2 से शुरुआत करने जा रहा हूं और वापस लौटने की दिशा में काम करूंगा। वह एक प्रोस्टेटिस थी, जिसका अनुवाद विभिन्न तरीकों से किया जाता है, कई लोगों की सहायक या संरक्षक। पॉल ने रोमन ईसाइयों से आग्रह किया कि वे उसका आतिथ्यपूर्वक स्वागत करें और उसके रास्ते में उसकी मदद करें, क्योंकि वह कई लोगों की सहायक प्रोस्टेटिस रही है, जिनमें मैं भी शामिल हूं। प्रोस्टेटिस एक परोपकारी के लिए एक शब्द था। यह एक संरक्षक था, लेकिन ग्राहकों के साथ संरक्षक के तकनीकी रोमन अर्थ में नहीं, विशेष रूप से गणतंत्र के दौरान, जो संरक्षक का अनुसरण करेगा और उन्हें सार्वजनिक रूप से अच्छा दिखाएगा ताकि अधिक लोग उन्हें वोट दें। लेकिन संरक्षक उस अर्थ में, जिस अर्थ में हम अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग करते हैं, कला के संरक्षक की तरह। एक परोपकारी किसी संगठन को प्रायोजित कर सकता है। वे बैठकों के लिए अपना घर खोल सकते थे। संभवत यहां इसी बात का जिक्र है। वह संभवतः अपने घर में एक गृह चर्च की मेजबान है जो संभवतः काफी बड़ा है। यह सोचने का एक और कारण कि वह एक व्यवसायी महिला रही होगी। कुछ लोग इसे किसी ऐसी चीज से जोड़ते हैं जो रोमियो 12:08 में एक ही क्रिया से निकली है, जब यह विभिन्न उपहारों को सूचीबद्ध करता है। वहां एक प्रबंधकीय उपहार है। फिर यदि वह एक व्यवसायी महिला है तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी कि उसके पास एक प्रबंधकीय उपहार है, हालांकि मुझे लगता है कि मुख्य बात यह है कि उसके पास एक हाउस चर्च है, उसके घर में एक बैठक है और यह उसे निश्चित रूप से प्रभाव की स्थिति प्रदान करता है, आदर करता है। दूसरी, इस स्लाइड में 16:1 लिखा होना चाहिए, क्या वह डायकोनोस है? डायकोनोस के अर्थ पर और भी अधिक बहस चल रही है। शायद यह 12:7 में उपहार से संबंधित है, सेवा या सेवा करने का उपहार डायकोनोस। लेकिन पॉल अपने लेखन में संज्ञा शीर्षक को अन्यत्र कैसे लागू करता है? संभवतः यह किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो डायकोनोस है, जो सेवा करता है या मंत्री है, लेकिन शीर्षक अध्याय 15:8 में यीशु पर लागू होता है। यह हाल ही में अध्याय 15:25 में अन्य जातियों के मंत्री के रूप में पॉल पर लागू होता है। यह 2 Corinthians 3:6, 6:4, 4:11:23 और Colossians 1:23 से 25 में पॉल पर भी लागू होता है। यह Colossians 1:7 में पॉल के साथियों पर भी लागू होता है और कभी कभी यह पर्यवेक्षकों से अलग एक कार्यालय को संदर्भित करता है। Philippians 1:1 और 1 Timotheus 3:1-13। इसलिए पॉलीन साहित्य में यह कभी कभी ऐसे कार्यालय को संदर्भित करता प्रतीत होता है जो पर्यवेक्षकों से अलग है। अक्सर यह किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है जो पॉल के अन्य उपयोगों में परमेश्वर के वचन की सेवा और प्रचार करता है। मैं इस पर थोड़ा और विस्तार से विचार करने जा रहा हूं, क्योंकि हम इस अध्याय में कुछ और दिलचस्प महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसका जो भी मतलब हो, निश्चित रूप से अगर पॉल ने इस तरह से उसकी सिफारिश की होती तो उसे पत्र को समझाने के लिए बुलाया जा सकता था। अब आम तौर पर प्राचीन काल में पत्रवाहकों के साथ यदि किसी को पत्र का मतलब समझ में नहीं आता था तो वे वाहक से पूछते थे कि इसका क्या मतलब है, और प्राचीन काल में हमारे पास इसके अन्य उदाहरण हैं। तो शायद पॉल के बाद रोमन या रोमन के कुछ हिस्सों को समझाने वाला पहला व्यक्ति फोएबे ही रहा होगा। महिला संरक्षक थीं। उन्होंने इस बारे में अनुमान लगाया है, फिलहाल यह अनुमान लगाया गया है कि सभी संरक्षकों में से लगभग 10% महिलाएं हैं। वे अल्पसंख्यक थे। स्त्रियां शिक्षित होने के कारण वह भी अल्पसंख्यक थीं। यहां तक कि उच्च वर्ग के घरों में भी महिलाओं को 14 वर्ष से अधिक उम्र में शायद ही कभी शिक्षित किया जाता था। इसलिए उन्हें आम तौर पर तृतीयक शिक्षा नहीं मिल पाती थी। कभी कभी कुछ दार्शनिक विद्यालयों में अपवाद होते थे, लेकिन भाषण शास्त्रियों में बमुश्किल कोई अपवाद होता था। मुझे लगता है कि सोसिपेट्रा, क्या वह एक दार्शनिक या वक्ता थी? आपको सोसिपेट्रा एस्पासिया मिला है। आपको ऐसे कुछ ही लोग मिले हैं जिन्होंने सदियों की लंबी अवधि में वास्तव में शिक्षक के रूप में प्रसिद्धि हासिल की है। महिलाओं को सामान्यतः उस स्तर की शिक्षा नहीं मिलती थी, और निःसंदेह यहूदी संदर्भ में उन्हें लड़कों की तरह टोरा पढ़ना सिखाकर बड़ा नहीं किया जाएगा। वहां कुछ बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं थीं, लेकिन वे अपवाद थीं। और महिलाएं आराधनालय में जा सकती थीं, लेकिन उन्हें वास्तव में टोरा का गहराई से अध्ययन करना नहीं सिखाया जाता था। वे व्याख्यान में बैठ सकते थे। हमें इसका एक मामला पता है। हम यहूदिया में 2 शताब्दी के अंत में बेरुरिया नाम की एक महिला के मामले के बारे में भी जानते हैं, जो रब्बी मीर की पत्नी थी, जो एक रब्बी की बेटी थी, जो घरेलू हलाका के बारे में बहुत जानकार थी। वह टोरा के बारे में कुछ बातें बहुत अच्छी तरह से जानती थी। बाद के स्रोतों में वह अन्य प्रकार के हलाका को भी जानती थी, लेकिन वह असाधारण थी। अधिकांश अन्य रब्बी उसकी बात नहीं सुनते थे। लड़कों को टोरा पढ़ना सिखाया जाता था और लड़कियों को नहीं। इसलिए आमतौर पर हमारे यहाँ महिलाएं वैसी शिक्षा प्राप्त नहीं करती जैसी पुरुषों के पास होती हैं। वास्तव में मुझे लगता है कि मैंने पहले उल्लेख किया होगा कि फिलो ने महिलाओं के बारे में बहुत नकारात्मक बातें की। एक यहूदी दार्शनिक के रूप में जोसिफस ने भी पहली शताब्दी के कुछ समय बाद लिखते हुए कहा था कि किसी महिला की गवाही को उनके लिंग की तुच्छता और गुस्ताखी के कारण स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यहूदी कानून और रोमन कानून दोनों ने महिलाओं की गवाही की वैधता या महिलाओं की गवाही की विश्वसनीयता को कम कर दिया। इसलिए पॉल यहाँ जो कर रहा है वह महत्वपूर्ण है। वह प्राचीन काल में महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाने वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं है। वह ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह ऐसा करने वालों में से है। वह महिलाओं का सम्मान करते थे, और यहाँ एक महिला है जो एक असाधारण महिला प्रतीत होती है। वह एक व्यवसायी महिला है। हम नहीं जानते कि वह कितनी पढ़ी लिखी थी, लेकिन वह एक व्यवसायी महिला है और जाहिर तौर पर वह साधन संपन्न महिला है। पॉल ने पत्र उसे अपने पास ले जाने के लिए सौंपा। पॉल यहाँ अध्याय 16 में कई नेताओं को जानता है, रोम के कई नेताओं को। वह स्पष्ट रूप से उन सभी को नहीं जानता है, लेकिन वह उनमें से कई को जानता है, और वह उनके बारे में जो कहता है उससे पता चलता है कि वह रोम में उनमें से बहुतों को जानता है। रोम और कोरिंथ के बीच तथा रोम और शेष पूर्वी भूमध्य सागरीय दुनिया के बीच यात्री अक्सर आते रहते थे। इसके अलावा क्लॉडियस के आदेश से निष्कासित किए गए लोगों में से कई, जैसे एक्विला और प्रिसिला, संभवतः कोरिंथ में बस गए थे, जो इटली के बाहर निकटतम स्थान था जहां वे जा सकते थे। वह एक रोमन उपनिवेश था और कई मामलों में रोम जैसा था, पूर्व की ओर जाने के मामले में जहां वे ग्रीक भी बोल सकते थे। इसलिए वर्ष 54 में क्लॉडियस की मृत्यु के बाद उसका आदेश स्वचालित रूप से निरस्त होने के बाद इनमें से कई लोग वापस आ गए होंगे और इनमें से कई लोगों को कानून के बारे में पता चल गया होगा। उनमें से कुछ ने पॉल के साथ काम किया था। इसलिए पॉल रोम के चर्चों में कई नेताओं को जानता है, भले ही वह संभवतः उन सभी को नहीं जानता है। मुझे संभवतः यह नहीं कहना चाहिए वह उन सभी को नहीं जानता है। वह जो कुछ बातें कहता है उससे पता चलता है कि वह उनके नाम जानता है, लेकिन उनके बारे में ज्यादा नहीं। तो इनमें से कुछ नेता जिनका उन्होंने उल्लेख किया है वे यहूदी थे, लेकिन आप उनके नाम से यह नहीं बता सकते कि उनमें से कितने यहूदी थे और कितने नहीं थे। उनमें से कुछ को हम उनके नाम से जानते हैं, कुछ को हम नहीं बता सकते क्योंकि कई यहूदी ग्रीक नामों का उपयोग करते हैं, जिनमें हर्मीस जैसे नाम भी शामिल हैं, जो यहाँ दिखाई देता है, जिसका नाम भगवान हर्मीस के नाम पर रखा गया है। याद रखें, पॉल का एक सहकर्मी है जिसका नाम अपोलोस है, जिसका नाम भगवान अपोलो के नाम पर रखा गया है। उनके अन्य सहयोगी भी हैं, ये अन्य जाति हो सकते थे, लेकिन तुकीकस, जिसका नाम तुके, भाग्य या वास्तव में संयोग के नाम पर रखा गया था, और इपफ्रोडिटस, पासा पलटने की तरह, जिसका नाम एफ्रोडाइट से संबंधित किसी चीज के नाम पर रखा गया था। इसलिए हमारे पास लैटिन नामों की तुलना में अधिक ग्रीक नाम हैं, और यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि सुसमाचार सबसे पहले पूर्वी प्रांतीय लोगों में फैला। इसलिए भले ही कोरिंथ में आपके पास अधिक रोमन नाम हैं, वह वहां के कुछ रोमन नागरिकों तक पहुंच रहा था। रोम में चर्च के एक बड़े हिस्से के प्रारंभ में उनके नाम ग्रीक थे और आप रोम में दूसरी शताब्दी तक चर्च के कई नेताओं के साथ नेताओं की सूची के संदर्भ में यह पाते रहेंगे। प्रिस्का और अक्विला, रोमियो 16 पद 3-5। क्लॉडियस के निष्कासन के बाद पॉल उनसे कोरिंथ में मिले थे। वे कोरिंथ और उसके बाद इफिसस दोनों में उसके सहकर्मी थे और उनके इफिसस में उसके साथ होने का वर्णन 1 कुरिंथियों में भी किया गया है। यहाँ पॉल उन्हें अपने साथी कार्यकर्ता कहते हैं, जो उनके सहयोगियों के लिए एक सामान्य शीर्षक था। वह इसका उपयोग पद 9, पद 16, पद 21, 2 कुरिंथियों 8:23, फिलिप्पियों 2:25 और 4:03, कुलुस्सियों 4:11, 1 थिस्सलुनिकियों 3:02, फिलेमोन 1 और फिलेमोन 24 में करता है। एक बहुत ही सामान्य लेबल जिसे पॉल मंत्रालय में अपने सहयोगियों के लिए उपयोग करता है। आम तौर पर पति का नाम पहले रखा जाता है, लेकिन नए नियम में 6 में से 4 बार प्रिस्का का नाम उसके पति से पहले रखा गया है। ऐसा क्यों? खैर, शिलालेखों में आम तौर पर पत्नी का नाम पति से पहले तभी रखा जाता था जब वह उच्च दर्जे की हो। तो किसी तरह प्रिस्का उच्च स्थिति की है, चाहे वह उच्च सामाजिक स्थिति हो या चर्च में उच्च स्थिति हो। यह चर्च में उच्च स्थिति हो सकती है क्योंकि पॉल आमतौर पर सामाजिक स्थिति का बहुत अधिक सम्मान नहीं करता है, जैसा कि हम 1 कुरिंथियों में देखते हैं। लेकिन फिर ये ऐसी चीजें हैं जिन पर हम संभाव्यता की डिग्री के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। कुछ स्थानों पर उसे प्रिस्का कहा जाता है, कुछ स्थानों पर उसे प्रिसिला कहा जाता है। ल्यूक को प्रिसिला का रूप पसंद है। पॉल अनुबंधित फॉर्म प्रिस्का को प्राथमिकता देता है। दोनों का नाम एक ही था। नामों के संकुचन के मामले में सिलास और सिल्वानस के साथ आपकी भी यही बात है। वे उसके लिए अपनी गर्दन जोखिम में डालते हैं, 16:04। वह सिर काटने की छवि का उपयोग करता है, जो इस अवधि में रोमन आम तौर पर रोमन नागरिकों के लिए तलवार का उपयोग करते थे। वे अब कुल्हाड़ी का उपयोग नहीं करते जैसा कि वे पहले कभी कभी करते थे, लेकिन यह एक मुहावरा बन गया था और आपको यह मुहावरा कई शताब्दियों पहले से चला आ रहा है। यह जान जोखिम में डालने का मुहावरा बन चुका था और कभी कभी चॉपिंग ब्लॉक पर अपना सिर रखने की छवि इत्यादि केवल जीवन को जोखिम में डालने के लिए एक मुहावरा था, जिसका प्राचीन साहित्य में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। मैंने इसे कई बार पाया। संभवतः उन्होंने पॉल के लिए ऐसा तब किया जब वे कुरिंथ या इफिसुस में उसके साथ थे। हम जानते हैं कि इफिसुस में उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, 2 कुरिंथियों 1। अधिनियमों से हम यह भी जानते हैं कि अब तक अधिनियम अध्याय 19 श्लोक 23 से 40 41 में जो कुछ हुआ वह पहले ही हो चुका था, क्योंकि पॉल वहां से चला गया था। वह मैसेडोनिया से होकर आया था, वह कोरिंथ आया था। तो इफिसुस में यह बड़ा दंगा हुआ था और शायद यहीं पर उन्होंने उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। हम निश्चित रूप से नहीं जानते, लेकिन फिर तब तक एशिया माइनर में दबाव के कारण शायद वे भी वहां से जा चुके थे, हमें पता नहीं। इस प्रकार वह कहता है, अन्य जातियों की सभी कलीसियाओं को उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि क्यों? उन्होंने अन्य जातियों के प्रेरित को बचाया है। तो वह एक आंदोलन के नेता हैं और उनके लिए अपनी गर्दन जोखिम में डालकर उन्होंने आंदोलन की सेवा भी की है। वह अध्याय 16 और पद 5 में उनके घर की कलीसिया के बारे में बात करता है। यह किसी भी प्रकार के आवास को संदर्भित कर सकता है। शायद इसका मतलब इफिसुस में एक घर है। इसका मतलब शायद एक घर रहा होगा जहां वे रहते थे, हालांकि संभवतः इफिसस में उनकी बहुमंजिला इमारतें भी थीं। लेकिन अगर यह यहां रोम में एक घर है, तो वे एकमात्र ऐसे लोग हैं जिनके पास वास्तव में रोमियो 16 में एक घर था। अन्य किसी भी स्थानीय मंडली में किसी घर का उल्लेख नहीं है। रोम में अधिकांश लोग टेनमेंट अपार्टमेंट, बहुमंजिला अपार्टमेंट में रहते थे। ये बहुमंजिला अपार्टमेंट अक्सर गिरने और आग लगने के लिए जाने जाते थे, और वास्तव में वर्ष 64 में लगी आग ने इनमें से बहुत सी इमारतों को जला दिया जो इस बिंदु पर खड़ी होती। इन इमारतों के भूतल पर आम तौर पर अमीर लोग रहते थे। यहीं पर उनके पास बहता पानी था। इसके अलावा भूतल पर अक्सर दुकानें होती थीं। कभी कभी दुकानों के साथ लोग दुकान में ही सो जाते थे। शायद दुकान के पीछे एक पर्दा होगा जहां वे रात को सोएंगे, या उनके पास एक परछत्ती होगी जहां वे दुकान से थोड़ा ऊपर उठ सकते हैं और वे वहां सोएंगे। लेकिन ऊपरी मंजिलें, कभी कभी ऊपरी मंजिल के अपार्टमेंट में जितनी जगह होती थी वह सोने के लिए पर्याप्त जगह होती थी, और यह शीर्ष के निकट सबसे कमजोर था। और यदि इमारत ढहने लगे तो आपके लिए समय पर बाहर निकलना भी कठिन हो जाएगा। लेकिन ऊपरी मंजिल के अपार्टमेंट के साथ आप अपार्टमेंट के भीतर उस तरह नहीं मिल सकते जैसे आप निचली मंजिल पर मिल सकते हैं। लेकिन कभी कभी आप अपार्टमेंट को जोड़ने वाले लंबे गलियारे में मिल सकते हैं, और यह अपने पड़ोसियों को भी सुसमाचार से परिचित कराने का एक शानदार तरीका होगा, ऐसी जगह पर एक घरेलू मंडली का आयोजन करके। इसलिए हम सटीक रूप से उन सभी स्थानों को नहीं जानते जहां वे मिले थे। वे संभवतः धनी घरों में अधिक बार मिलते थे, जहां तक घूमने फिरने के लिए पर्याप्त जगह होती थी, क्योंकि उन स्थानों पर आपको बहुत अधिक लोग मिल सकते थे। अब हमें यह ध्यान में रखना होगा कि पॉल अपने साथी मंत्रियों के लिए जिन दो सबसे सामान्य शब्दों का उपयोग करता है वे डायकोनोस हैं। वह तो हम पहले ही देख चुके हैं। यह पद एक के लिए प्रासंगिक है। कभी कभी इसका अर्थ डीकन होता है। यह एक तीमुथियुस 3 में है, शायद फिलिप्पियों 1:1 में। पहली शताब्दी में एक उपयाजक जो भी था, दूसरी शताब्दी में वह क्या था, इसके बारे में हमारे पास बहुत अधिक विवरण है। हम पहली शताब्दी में योग्यताओं को जानते हैं, लेकिन विभिन्न चर्च परंपराओं ने इसे पहली शताब्दी में जो होना चाहिए था उसके संदर्भ में अलग अलग तरीकों से लिया है। लेकिन जहां भी हम इसका अर्थ निर्धारित कर सकते हैं, पॉल इसका उपयोग अपने मंत्रालय या अपने सहयोगियों के लिए करता है। अब आम तौर पर उनके सहकर्मी पुरुष थे क्योंकि ये यात्रा करने वाले साथी थे। लेकिन वह इसे रोमियो 16:1 में फोएबे पर लागू करता है क्योंकि उसके पास वह पत्र है जिसमें पॉल ने उसकी सराहना की है। रोमन ईसाई उससे इसे समझाने के लिए कह सकते थे। लेकिन यहाँ प्रिस्का और एक्विला के मामले में हमारे पास सिनेर्जोस साथी कार्यकर्ता शब्द है। पॉल इसे एक जोड़े के रूप में उन पर लागू करता है। वह उनके मंत्रालय की सराहना करते हैं। वे घरेलू चर्च के नेता थे। अधिनियम 18 कहता है कि उनकी टीम ने अपोलोस को पढ़ाया, हालांकि उस संस्कृति में किसी को निजी तौर पर पढ़ाने और सार्वजनिक रूप से पढ़ाने के बीच अंतर था। हम इस अध्याय में उल्लिखित बहुत सी महिलाओं को देखेंगे, और आश्चर्य की बात यह है कि जब वह सुसमाचार में उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उनकी सराहना करता है या काम करने के लिए उनकी सराहना करता है और कहीं और वह उस शब्द का उपयोग कर रहा है जिसमें सुसमाचार में काम करने के लिए इस संदर्भ में भी शामिल है, तो वह महिलाओं को उनके मंत्रालय के लिए उनकी तुलना में अधिक बार सराहना कर रहा है। पुरुषों की सराहना करना, तो यह एक तरह से आश्चर्य की बात है। उन्होंने महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या दोगुनी बताई है। और अगर हम इसे एक नियम बनाना चाहते हैं इस तरह, यह हमारे लिए एक आदर्श है, तो आप जानते हैं, आप सड़क पर जाते हैं, आप महिलाओं की तुलना में दोगुने पुरुषों का अभिवादन करते हैं, सुनिश्चित करें कि आप ऐसा करते हैं। नहीं, शायद बात यह नहीं है कि हम इसका कोई मॉडल बनाएं, लेकिन वह संभवतः मुख्य रूप से घरेलू चर्चों के नेताओं का अभिवादन कर रहा है। वह रोम में हर किसी का नाम नहीं जानता, लेकिन वह कुछ लोगों के नाम जानता है, और उनमें से अधिकांश पुरुष थे। लेकिन वह पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भी अधिक सराहना करते हैं। इसलिए प्रति व्यक्ति के संदर्भ में यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं की चार गुना अधिक सराहना करने जैसा होगा, आनुपातिक रूप से कहें तो। क्यों? शायद उन्हें उस संस्कृति में पुरुषों की तुलना में अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। लेकिन आइए पुरुषों और महिलाओं दोनों के कुछ उदाहरणों पर थोड़ा और गौर करें। श्लोक 7 पर पहुंचने के बाद हम इसके बारे में और अधिक बात करेंगे। इपेनेटस और मैरी 16 श्लोक 5 और 6। इपेनेटस एक ग्रीक नाम है, जैसे सूची में बहुत सारे नाम हैं। उन्हें एशिया का पहला फल कहा जाता है। तो वह पॉल के इफिसियन मंत्रालय से परिवर्तित हो सकता है, अधिनियम 18 श्लोक 19 से 19 श्लोक 41। पॉल कहीं और एक क्षेत्र के पहले फल की बात करता है। उदाहरण के लिए वह एक कुरिन्थियों 16 में अखाया के पहले फल के बारे में बात करता है, जब वह वहां के विश्वासियों में से एक के बारे में बात कर रहा होता है। कुछ लोगों ने कहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि उसने एथेंस में कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराया, लेकिन इस अवधि में एथेंस तकनीकी रूप से अचिया प्रांत का हिस्सा नहीं था। यह एक आजाद शहर था, इसलिए तकनीकी रूप से उन्हें उस तरह से एथेंस से धर्म परिवर्तन के बारे में बात करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इपेनेटस 16:05 और 16:06 में मारिया भी। रोमनों का एक नाम इस तरह था, एक लैटिन नाम इस तरह था, लेकिन यह नाम अक्सर इस्तेमाल किया जाता था नए नियम में हर दूसरे अवसर पर कहने के दूसरे तरीके के रूप में मिरियम। मरियम यहूदिया और गलील में अब तक का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाम महिलाओं का नाम था। यह सच था, विशेषकर मरियम ने के बाद से, जो एक मैकाबीन राजकुमारी थी। यही कारण है कि आप सुसमाचार में बहुत सारी मरियमों, सुसमाचारों में मरियमों से मिलते हैं। मारिया ने आपके लिए बहुत मेहनत की, जैसे वह श्लोक 12 में परसिस के बारे में भी कहने जा रहा है। पॉल अपने स्वयं के आध्यात्मिक कार्यों का वर्णन इस प्रकार करता है, 1 कुरिन्थियों 15:10, गलातियों 4:11, फिलिप्पियों 2:16, कुलुस्सियों 1:29 और दूसरों के भी 1 कुरिन्थियों 16:16 और 1 थिस्सलुनीकियों 5:12। खैर, एंड्रोनिकस और जूनिया बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। वे हमारे लिए कुछ नए मुद्दे उठाने जा रहे हैं। एंड्रोनिकस और जूनिया 7, वे पॉल से पहले मसीह में थे, वह कहते हैं। तो संभवतः वे प्रेरितों के काम अध्याय 9 में पॉल के रूपांतरण से पहले से ही विश्वासी थे, जिसका अर्थ है कि सुसमाचार के प्रसार को देखते हुए शायद वे यरूशलेम चर्च का हिस्सा थे, विशेष रूप से उनके नाम दिए गए थे। उनके पास अरामी ध्वनि वाले नाम नहीं हैं। वे संभवतः गलील से नहीं हैं। वे संभवतः यहूदिया के अन्य क्षेत्रों से नहीं हैं। तो एंड्रोनिकस एक ग्रीक नाम है, जूनिया एक रोमन नाम है। हो सकता है कि वे उस आराधनालय का हिस्सा रहे हों जिसका हिस्सा पॉल था, संभवतः अधिनियमों के अध्याय 6 और श्लोक 9 में डायस्पोरा लिबर्टिनी का आराधनालय, मुक्त व्यक्ति जो रोमन साम्राज्य के अन्य हिस्सों से वहां आकर बस गए थे। पॉल उन्हें रिश्तेदार कहते हैं, जिसका अर्थ यह भी हो सकता है कि क्या वे उस आराधनालय का हिस्सा हैं, सिवाय इसके कि उनका मतलब शायद यहां संकीर्ण अर्थ में रिश्तेदारों से नहीं है। वह इसे रोमियों अध्याय 9 में रिश्तेदारों के लिए और पद 3 में केवल साथी यहूदियों के लिए अधिक उपयोग करता है। वह इसे इस अध्याय में श्लोक 11 और 21 में भी उपयोग करता है। तो शायद उसका मतलब उनके साथी यहूदी हैं, लेकिन वह उन्हें साथी कैदियों के रूप में भी उल्लेख करता है। वह इसे आलंकारिक रूप से उपयोग कर सकता था, लेकिन कभी कभी वह इसे शाब्दिक रूप से उपयोग करता है, जैसे कि कुलुस्सियों 4:10 और फिलेमोन पद 23 में। भला वे उसके साथी कैदी कहां रहे होंगे? जो आप लेना चाहते हैं लें। पॉल का कहना है कि उसे अक्सर कैद किया जाता था, इसलिए आप नहीं जानते, लेकिन शायद वे इफिसुस में उसके साथी कैदी थे, जहां उसे बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा। 1 कुरिन्थियों 15:32। शायद वे उससे पहले जेल में थे। शायद वह वही था जिसने उन्हें यरूशलेम की जेल में डाल दिया था। हमें पता नहीं। संभवतः यह पति पत्नी हैं, संभवतः अविवाहित भाई बहन भी हो सकते हैं, लेकिन उस समय महिलाओं की कमी के कारण अधिकांश महिलाओं की शादी काफी कम उम्र में कर दी जाती थी। रोम में उतना नहीं जितना कोरिंथ में, और यहूदी लोगों में उतना नहीं जितना अन्य जातियों में, लेकिन यहूदी लोग विवाह पर बहुत जोर देते थे। तो शायद ये पति पत्नी हैं। यदि यह पति पत्नी नहीं है तो इसे भाई बहन होना चाहिए, अन्यथा पुरुष और महिला का एक साथ यात्रा करना निंदनीय होता। लेकिन यह एंड्रोनिकस और जूनिया को प्रेरितों के बीच उत्कृष्ट होने की बात करता है, और इससे बहुत सारे कीड़े खुल जाते हैं, और इसलिए मैं आपको इस पर चर्चा करने के लिए अगले सत्र तक इंतजार करने जा रहा हूं। यह रोमन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह रोमियो 15:29 से 16:07 पर सत्र 16 है।